ओम शांति। तो ये प्रश्न है 5 जून 77। प्रश्न है, नष्टोमोह बनने की सहज युक्ति कौन सी है? नष्टोमोह बनने की सहज युक्ति कौन सी है? तो उत्तर है, सदैव अपने घर की स्मृति में रहो। आत्मा के नाते आपका घर परम धाम है और ब्राह्मण जीवन के नाते साकार सृष्टि वृक्ष में यह मधुवन आपका घर है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का घर मधुवन है। ये दोनों ही घर स्मृति में रहें तो नष्ट मोह हो जाएंगे, क्योंकि जब अपना परिवार अपना घर कोई बना लेते तो उसमें मोह जाता है। अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं जाएगा। सदैव बुद्धि में रहे, सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं हैं, ना कि मेरा लौकिक कोई लौकिक परिवार है, सब अलौकिक सेवादारी हैं। कोई सेवा करने के निमित्त हैं, कोई की सेवा करनी है। लौकिक संबंध भी सेवा के अर्थ मिला है। यह मेरा लड़का है या लड़की है, नहीं, सेवा के निमित्त यह संबंध मिला है। मैं पति हूं, पिता हूं, चाचा हूं, यह संबंध समाप्त हो जाए तो ट्रस्टी हो जाएंगे। स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती है जब मेरापन है। स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती है जब मेरापन है। अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्ट मोह हो जाएंगे। नष्ट मोह अर्थात स्मृति स्वरूप। तो ये प्रश्न था 5 जून 77 का। तो बाबा इसमें नष्ट मोह बनने की सहज युक्ति बता रहे हैं। तो इसमें बाबा ने दो चीजें तो ये बताई कि मोह कहां जाता है, अपने घर में जाता है। अपना घर जब बना लेते हैं तो मनुष्य का भाव मोह जाता है। और फिर संबंधों में बताया, मेरा जहां मेरा संबंध समझते हैं, मेरा बेटा है, बेटी है, चाचा है, ये सब संबंध है तो भी फंस जाता है। तो इससे सहज युक्ति बाबा ने बताई, अगर आपका घर है तो कौन सा असली घर है? दो घर बताए, आत्मा के नाते परम धाम और साकार सृष्टि का जो ये रूप में साकार रूप में मधुवन आपका घर है। तो इस मोह से मुक्त होने के लिए कुछ युक्तियां चाहिए। तो कौन कौन सी युक्ति होगी हमारे जीवन में जो हम इस मोह के पास में बंधे हुए हैं, तो कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो कुछ एक बिंदु हमें बुद्धि में रखने पड़ेंगे हमेशा। जैसे बाबा कहते हैं, हमेशा अपने को मेहमान समझो। मनुष्य जब मेहमान बन के जाता है तो उसका वहां इतना लगाव नहीं होता है, उसको अपना घर स्मृति में रहता है। तो उसी तरह से हम भी इस दुनिया में मेहमान हैं और दूसरा इस शरीर में मेहमान हैं, कुछ समय के लिए हैं। और दफ्तर की बाबा ने बात बताई, दफ्तर में जाते हैं नौकरी करने तो फिर वापस घर ही खींचता है। जब काम धंधा पूरा होता है तो वापस घर ही जाते हैं ना। इसी तरह हम यहां सेवा में उपस्थित हुए हैं। एक तो बाबा कह रहे इसको सेवा स्थान समझो, और दूसरा या तो सेवा करने के लिए आया, सेवा करनी है, एक तो करनी है और दूसरा जो आत्माएं हैं वो भी सेवा लेने वाली है हमारी। माना सेवा करने के निमित्त है, कोई की सेवा करनी है। तो ये लौकिक संबंध भी सेवा के अर्थ मिला है। तो इसमें जो कल बहन जी ने बताया था एक के नष्ट मोह का, बहुत अच्छा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि कौन से अभ्यास के द्वारा उन्होंने उस परिस्थिति को पार किया कंबाइंड स्वरूप, जबकि उनको ज्ञान नहीं था। केवल वो अपने कहें स्वार्थ के लिए मुरली सुनने जाते थे और कोई एक पॉइंट मिल जाता था तो उसी के आधार पर वो अपने परीक्षा देकर आगे बढ़ते थे। तो जितना उन्होंने कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास किया तो उतना वो साक्षी हो गए, डिटैच हो गए और जितनी भी विकराल परिस्थिति आई, उनके घर वाले ने शरीर छोड़ा, बहन ने शरीर छोड़ा, लेकिन उस समय भी उनकी अवस्था जो कितनी अचल अड़ोल रही बिना ज्ञान की। तो हमको तो बाबा ने पूरा ज्ञान दिया है, समझ है, बाबा ने बताया है कि दुनिया जो भी रहने वाली नहीं है, ज्ञान ओवर हो गया या उसको हमने पूरी तरह समझा नहीं है। तो एक तो कंबाइंड रूप का हम जितना जितना अभ्यास करेंगे, क्योंकि मोह जो होता है, अधिकतर मोह तभी जागृत होता है जब हम देह की स्मृति में रहते हैं, देह की दुनिया में जीते हैं, देह के संबंधों की स्मृति रहती है, देह के पदार्थों की स्मृति रहती है। तो जितना देह की स्मृति रहती है उतना हमारा मोह भी बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्यादा से ज्यादा अशरीरीपन का अभ्यास करो, कंबाइंड रहो, बाप को अपना साथी बनाओ, हर संबंध से बाप को याद करो, तो हम मोह से मुक्त होते जाएंगे। और दूसरा बताया बाबा ने मेरापन, जो भी चीज को हम पकड़ के रख लेते हैं, मोह भी अनेक प्रकार का होता है, वस्तुओं से मोह है, संबंधों से मोह है, साधनों से मोह है, तो उस मोह से भी मुक्त होने के लिए हम जैसे ट्रस्टी हैं, यहां बीच में बाबा ने बताया ना कि ट्रस्टी समझ के चलो, तो जितना हम ट्रस्टी बन के समझ के चलेंगे तो उन चीजों से भी हम मुक्त होते जाएंगे। नहीं तो हमारी जो जीने की मानसिकता है वो हद में रहती है। अगर हमारा मोह है तो वो मोह सार्वजनिक होना चाहिए, मन सबसे सार्वभौमिक यूनिवर्सल है। इसलिए कहते हैं जियो तो ऐसे जियो जैसे सब अपने हैं, और जियो तो ऐसे जियो जैसे अपना कोई नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि जाना तो है ही सभी को, और ये सब पता होने के बाद भी हम इन चीजों को पकड़ के रखें तो समझदारी क्या कहेंगे। जैसे आज के मुरले में है ना, अगर मास्टर सब शक्तिवान बनकर भी मेहनत की तो मास्टर बन के क्या किया। तो ज्ञान समझ में आने के बाद भी इस ज्ञान का हम फायदा नहीं ले रहे हैं तो ज्ञान लेकर क्या किया हमने। तो नष्ट मोह बनने के लिए बाबा कहते हैं अपने को ट्रस्टी समझो, इस दुनिया में मेहमान समझो, महान है, अशरीरीपन का अभ्यास करो, और दूसरा समय की जागृति कि इस समय कौन सा चल रहा है। आज ही बताया ना बाबा ने मुरली में, आज की मुरली में है कि सहज प्राप्ति का युग है, सहज सर प्राप्ति स्वरूप का युग है, और मेहनत से मुक्त होने का युग है। तो इस युग में, इस युग की अगर हम विस्मृति में जी रहे हैं तो भी हमारा मोह बढ़ता जाएगा, इसलिए उसको विस्मृति, इसलिए बाबा ने स्मृति विस्मृति की बात की ना कि स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती है जब मेरापन है। तो विस्मृति का रूप तब लेती है जब अनेक चीजों को हमने अपना मान के रखा है, जैसे बाबा ने कहा मेरा लड़का लड़की है नहीं, मैं पति हूं पिता हूं चाचा हूं नहीं, ये सब संबंध समाप्त हो जाए। तो इन संबंधों से भी मुक्त होने के लिए लंबे समय की साधना, एक है स्थूल साधना, एक है सूक्ष्म साधना जो हमारी व्यवहारिकता में आती है। बैठ के साधना करना ठीक है, लेकिन सूक्ष्म साधना अर्थात कहीं हमारा जिस स्थान पर हम जन्मे हैं उस स्थान से मोह है, उस प्रांत से मोह है, उस भाषा से मोह है, उस कल्चर से मोह है, तो भी हम जैसे पकड़े हुए हैं। तो बाबा ने कहा इन सब से मुक्त, मेरा पति मेरे बच्चे या चाचा हूं पति हूं पिता हूं नहीं, सब संबंध एक बाप से। तो छोटी छोटी बातों में भी अगर हम उन चीजों को पकड़ के रखे हुए हैं, उसी भाषा को पकड़ के रखे हुए हैं, तो भी हम मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। अगर हम उसी भाषा में जीते हैं तो जैसे कोई उसी एरिया का मिलेगा तो हमारी खुशी बढ़ जाती है, उसी भाषा में चालू कर देते हैं। अपनी भाषा छूटती क्यों नहीं है, अपनी भाषा माना जो लौकिकता वाली भाषा है, छूटती नहीं है। दो व्यक्ति खड़े होंगे और उसी भाषा में चालू हो जाएंगे। तो ये जो सूक्ष्म चीजें हैं जो हमको मोह पाश में बांध के रखी हैं, जो हमको उड़ने नहीं दे रही है, स्वतंत्र नहीं होने दे रही हैं, अधीन बना के रखी हैं, तो अधीनता की अनेक बातें हैं जिनसे हम अपने जीवन को मोह से मुक्त नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं मोह की जो सूक्ष्म जंजीरें हैं वो हमें स्वयं ही चेक करना है कि कहां कहां हमारी रगें हैं, चाहे स्थूल रूप से है, चाहे सूक्ष्म रूप से, चाहे लौकिक में है, चाहे अलौकिक में है, क्योंकि अलौकिक से भी ऊपर उठना है। भले स्थूल रूप से हम लौकिक संबंधों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन अलौकिक परिवार में आने के बाद एक नया संसार चालू हो जाता है, नए संसार से अनेक संबंध जुड़ते जाते हैं, तो इनसे भी मुक्त होना है। यहां भी हमको देखना पड़ेगा कौन कौन सी ऐसी जंजीरें हैं, कौन कौन सी ऐसी रस्सियां हैं जो हमें उड़ने नहीं दे रही हैं, जिन्होंने हमारे मन को बांध के रखा हुआ है। तो स्वयं की स्वयं ही जांच चेक करनी है, ताकि हम अंतिम जो नष्ट मोह स्मृति स्वरूप का जो पेपर है, जिसमें हमको पास होना है, पास भी दोनों होना है, नंबर वन आना है, तो इन चीजों से सबसे लंबे समय से मुक्त होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको लिस्ट स्वयं ही तैयार करनी पड़ेगी कि इनसे मुक्त कैसे हो और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमको मुक्त होना है। तो फिर से प्रश्न एक बार पढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, नष्टो मोह बनने की सहज युक्ति बाबा बता रहे हैं, सदैव अपने घर की स्मृति में रहो, आत्मा के नाते आपका घर परम धाम है। तो सारे दिन में हमें कितनी स्मृति रहती है कि सचमुच मेरा असली घर परम धाम है, उस घर में रहने का हम प्रयास करते हैं, या इसी स्थूल संसार के जो घर है वो ही याद आता रहता है। और ब्राह्मण जीवन के नाते भी साकार सृष्टि वृक्ष में ये मधुवन आपका घर है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का घर मधुवन है। ये दोनों ही घर स्मृति में रहे, कौन सा, एक तो परम धाम, दूसरा मधुवन, तो नष्ट मोह हो जाएंगे। क्योंकि जब अपना परिवार, अपना घर कोई बना ले तो उसमें मोह हो जाता है, यहां परिवार की बात है, फिर परिवार से भी मोह हो जाता है। एक तो है लौकिक परिवार में जहां हमको ज्ञान मिलता है, हमको अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे अगर हमारा मोह होता है तो जैसे तो बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेंस एट होम, कि घर से शुरुआत करो, लेकिन होता यह भी है कहीं ना कहीं हमारा मोह होता है और हम सोचते हैं कि ये भी हमारे संबंधी ज्ञान में चलने चाहिए, ये भी हमारा कहीं ना कहीं मोह है। जो बीज है अंकुरित, वो कोई बीज जल्दी अंकुरित होता है, कोई कुछ समय के बाद अंकुरित होता है। तो अगर हम ऐसा अपेक्षा रखते हैं कि हमारे संबंधी भी ज्ञान में चल पड़े, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा मोह है, जिसको चलना होगा वो चल पड़ेगा, उतना मोह वश उनके पीछे नहीं पड़ना है। अगर मोह है तो हम उनके पीछे पड़े रहते हैं। शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, वो शुभ भावना शुभ कामना है, पहले स्वयं को हम ऐसा परिवर्तन करके दिखाएं, हम ज्ञान को उस तरीके से यूज करें ताकि वहां भी उनको सहज लगे। नहीं तो हमें अपने नियम मर्यादाओं को पालन तो करते हैं, लेकिन सहज रूप से उनके सामने पालन नहीं करते, हम कठिन रूप से करते हैं, जैसे शुआशूत जैसा समझकर चलते हैं उनसे साथ। जैसे नियम है कि पहले तो नियम बड़े कड़क होते थे कि जहां हम सोते हैं कोई खटिया पर बैठना नहीं चाहिए, लेकिन परिवार में ऐसा नहीं हो सकता है, परिवार में तो कोई भी बैठेगा आगे, और हम उनको कहें नहीं उठो उठो आप यहां से, आप तो शूद्र हो, हम ब्राह्मण हैं, तो कहां कौन ज्ञान में चलेगा, और फिर एक तरफ फैले इनको भी ज्ञान में चलना चाहिए। तो लौकिक संबंध में हम जहां भी रहते हैं बहुत सारी चीजें से हमको समझदारी से चलना पड़ेगा, नहीं तो हम स्वयं ही अपने पुरुषार्थ में विघ्न बनते रहेंगे, और हम सोचेंगे विघ्न सामने वाला है, सामने वाला विघ्न नहीं है हमारे रास्ते में, विघ्न हम स्वयं ही क्रिएट कर रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं परिवार में यह भी देखना पड़ेगा कि उनके साथ कैसे चलना है। तो यहां बाबा कह रहे हैं, ये दोनों ही घर स्मृति में रहे, मधुबन और परमधाम, तो नष्ट मोह हो जाएंगे। क्योंकि जब अपना परिवार, अपना घर कोई बना लेते हैं तो उसमें मोह जाता है, घर से मोह है तो उसी को जाने संवारने में लगे रहेंगे। स्वच्छता रखना ठीक है, लेकिन सारा दिन उसके बारे में चिंतन करना, उसकी साज सज्जा करना, घर को सिंगारने में लगे रहना, चीजें एकत्रित करना, तो अपना घर कोई बना लेते हैं तो उसमें मोह जाता है। फिर देखा गया है जितना हमारे पास अगर आवश्यकता से अधिक साधन है, माना जीवनचर्या में दिनचर्या में जो यूज करने हैं, तो वो साधन भी, वो चीजें भी हमें खींच के रखती हैं, वो भी हमको बांध के रखी हैं, जिस चीज की जरूरत नहीं है और सालों साल हमारे पास पड़ी है और कोई उपयोग में नहीं आ रही है, तो वो चीजें भी हमारे मन को बांध के रखती हैं, खींचती हैं। इसलिए जितना हो सके जो चीजें हमारे काम की नहीं है या दूसरों के काम में आ सकती हैं, तो हमको दान कर देनी चाहिए। काली बाबा की मुरली में था कि दानी बनो, अविनाशी ज्ञान रत्नों के दानी बनो। जो दानी होते हैं वो रिलीजियस माइंडेड वाले होते हैं, और दानी बनो अर्थात मेडिटेशन सिखाओ उनको, काली की मुरली में था ना। तो बाबा कह रहे अपना का घर कोई बना लेते तो उसमें मोह जाता है, अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं जाएगा। दफ्तर में हम ड्यूटी सर्विस करने जाते हैं तो वहां मोह नहीं रहता है, भले हमारा ध्यान है सर्विस करने में, लेकिन क्या हम मन में क्या होता है कब यहां से छूटे हम घर में जाएं। तो सदैव क्या समझो कि दफ्तर में हम तो मोह नहीं जाएगा। सदैव बुद्धि में रहे सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं हैं। सदा बुद्धि में रहना चाहिए कि सेवा स्थान में हम केवल सेवा के लिए निमित्त हैं, ना कि मेरा कोई लौकिक परिवार है। जैसे लौकिक परिवार से विस्मृत हो गए एकदम, सब अलौकिक हैं, लौकिक में रहते भी उनको अलौकिकता से अलौकिकता की नजर से देखें, हम वहां अलौकिक सेवादारी हैं। कोई सेवा करने के निमित्त है और कोई की सेवा करनी है, जहां हम सेवा में उपस्थित हैं तो वह हमें उनकी सेवा करनी है। लौकिक संबंध भी सेवा के अर्थ मिला है, ये मेरा लड़का है या लड़की है, नहीं, क्योंकि बिना क्रिया के प्रतिक्रिया नहीं होती। जहां जहां हम उपस्थित हैं तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब ही हमको वहां लेके गया हुआ है, तो उस हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए हमको ये लौकिक संबंध जो मिला है वो सेवार्थ के मिला है, सेवार्थ मिला है। ये मेरा लड़का है या लड़की है, नहीं, सेवा के निमित्त है ये संबंध मिला है। मैं पति हूं, पिता हूं, चाचा हूं, ये सब संबंध समाप्त हो जाए तो ट्रस्टी हो जाएगी, और ट्रस्टी माना ही स्वतंत्र, जो पिछले प्रश्न में पढ़ा था, ट्रस्टी माना ही स्वतंत्र हो, उसका वहां लगाव नहीं होता। जैसे कैशियर है बैंक में तो उसको पैसे से लगाव नहीं होता है, उसको केवल उसकी देखभाली करनी होती है। जैसे डॉक्टर होता है तो पेशेंट को ठीक करता है, पेशेंट से मोह थोड़ा नहीं होता है, पूरा डिटैच होता है उससे, जितनी भी भयंकर बीमारी हो उसको, लेकिन उससे डिटैच होता है, उसको अपने पैसे से लेना देना होता है, पैसा लिया और पूरा हो गया काम, अपनी पगार से मोह होता है। तो उसी तरह से हमें पुण्य कर्मों से मोह होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं ये संबंध जो है सब संबंध समाप्त हो जाए, लौकिक संबंध बुद्धि से, हाँ, अलौकिक सेवा में बिजी रहेंगे तो भी लौकिक से हमारा संबंध जो है वो टूटता जाता है। बाबा ने कहा था कि जितना आप अपने आप को सेवा के बंधन में बांध देंगे तो दूसरे बंधन से छूट जाएंगे। माताओं की मुरली में है विशेष स्थूल सेवा में भी, घर में भी कई बार हमने देखा है सेंटरों में जो टीचर बहनें होती हैं वो माताओं को सेवा देती है, तो घर में जाके वो माताएं करती रहती हैं सेवा, किसी को अनाज साफ करने के लिए कि बोरी घर में छोड़ के आ जाएंगे, वो दिन भर अनाज साफ करेंगे, किसी को कुछ बनाने के लिए दे देंगे, ये चीज बना के लाना, टोली बना के लाना, तो सारा दिन फिर अगर उसमें ध्यान लगा रहता है, भले उस चीज को बनाने में सारे दिन में एक ही घंटा लगे, लेकिन बुद्धि वहीं रहती है कि हमको सेंटर से सेवा मिली हुई है, तो कम से कम उस तरीके से ही सेवा में बिजी रहते हैं तो भी हम हमारे लौकिक संबंधों से मुक्त होते जाते हैं। हाँ, उससे पुण्य भी बनता है, बाबा की याद भी रहती है, घर का वातावरण भी बदलता है, हमारी स्थिति भी शक्तिशाली होती है, भावनाएं श्रेष्ठ हो जाती हैं, और जो हम सेवा भाव निरंतर करते रहते हैं तो दूसरे जो देखते हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है, उनको भी कुछ ना कुछ अनुभूति होती है। तो बाबा कह रहे हैं लौकिक संबंध समाप्त हो जाएं तो ट्रस्टी हो जाएंगे। स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती है जब मेरापन है, तो जो हमें को स्मृति है वो विस्मृति तब हो जाती है, तो मेरापन कहां कहां है ये हम खुद ही चेक कर सकते हैं। चाहे किसी के अवगुणों को देखने में लगे हुए हैं, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, या अपनी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में मेरापन है, कोई संबंधों से है, जैसे बताया पीछे बाबा ने कि चाचा है, पति है, पत्नी है, ये भी संबंध मेरे नहीं है, वो पत्नी है तो किसकी है, बाबा की पत्नी है, संबंध सारे उसके ही है। हाँ, ये जो बैज है ये मंगलसूत्र है, तो वो सब संबंधों से, तो सर्व संबंधों से बाबा को याद, काल था ना गुप्त भक्ति मार्ग में भी माला फेरते, तुम्हारी है गुप्त माला, याद की माला, तो ये माला पहनाई है बाबा ने हम सबको, याद की माला पहनी रखनी है, तो तो भिन्न भिन्न तरीके से माला को फेरते रहेंगे, जपते रहेंगे, तो भी हम नष्ट मोहा हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती जब मेरापन है। अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्ट मोहा हो जाएंगे। नष्ट मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप। तो जितना जितना हम स्मृति में रहेंगे, अपने स्मृतियों को भिन्न भिन्न तरीके से बढ़ाते रहेंगे, तो हमारी जो स्थिति शक्तिशाली बनती जाएगी और इस दुनिया से, इस देह से हम डिटैच होते जाएंगे। तो लंबे समय तक हमको एक तो अशरीरीपन का अभ्यास, क्योंकि जितना हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे उतना हमको अपने घर की स्मृति रहेगी, बाबा की स्मृति रहेगी, क्योंकि बाबा भी अशरीरी है। और उस स्थिति में रहने से जो उसके संस्कार हैं, जो उसके गुण हैं, जो उसकी शक्तियां हैं, वो हम स्वयं अनुभव कर पाएंगे। अगर हम, इसलिए बाबा कहते हैं कल की वरदान मतलब देही अभिमानी बनो। सारा जो विस्मृति का जो आधार है वो सारा देह अभिमान है। तो देह अभिमानी स्थिति में मुक्त होते जाएंगे तो हम स्मृति हमारी समर्थ होती जाएगी, शक्तिशाली होती जाएगी, और हम बाबा की छत्रछाया का अनुभव करते हुए संसार के जितने भी लौकिक संबंध हैं, लौकिक पदार्थ हैं, जहां जहां मेरापन है, जहां जहां हमारा मन बंधा हुआ है, उनसे मुक्त होते जाएंगे। तो इसके लिए, और फिर वैराग्य भी, अशरीर स्थिति में होने से वैराग्य भी हमारा बढ़ता जाएगा। मुख्य इसके लिए नष्ट मोह बनने के लिए वैराग्य बहुत जरूरी है। अगर हमारा वैराग्य नहीं है तो हम पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मोह जीत नहीं बन जाए पाएंगे, नष्ट मोह नहीं बन पाएंगे। तो अशरीर स्थिति का अनुभव और कंबाइंड स्वरूप, जो कल बहन ने बताया कि कैसे कम उनका हमेशा एक ही अभ्यास रहता है कंबाइंड, क्योंकि जब बाबा साथी है, सुप्रीम अथॉरिटी सर्वशक्तिवान साथ है, तो उसकी छत्रछाया हम चलते रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। हर परिस्थिति को सामना करने की कोई ना कोई टचिंग मिलती रहेगी और सहज रूप से हम परिस्थिति सामना करके स्वयं भी शक्तिशाली बनते रहेंगे। तो ये चीज थी नष्ट मोह बनने की एक युक्तियां निकाली हमें स्वयं भी। ये तो बाबा ने एक थोड़ा सा बताया है, 5 जून 77 की मूली है। इसके अलावा हम स्वयं भी चिंतन कर सकते हैं कि कैसे हम नष्ट मोह बने और अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाएं। तो इसमें बाबा ने बताया कि एक तो सदैव अपने घर की स्मृति में रहो, आत्मा के नाते कौन सा घर है हमारा, परम धाम, और शरीर के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते, ये मधुबन हमारा घर है। यहां से हम सेवा स्थान पर गए हुए हैं, जहां भी रहते हैं लौकिक घर में, बाबा कहते हैं वो सेवा स्थान है, आपको सेवा मिली हुई है और आप वहां सेवाधारी हो। तो ये दोनों ही घर स्मृति में रहे तो नष्ट मोह हो जाएंगे। अपना परिवार, हाँ, अपने घर को लौकिक जो है उसको हम अपना ऑफिस समझे, कर्म क्षेत्र है, वो हमें एक सेवा स्थान मिला हुआ है। हाँ, फाइनल तो इधर ही आना ही है। वैसे भी देखो जो बाबा के बनने के बाद ध्यान किधर रहता है, मधुबन ही रहता है। यहां से अगर कोई सेवा में आता भी है तो यहां से वापस जाते हैं तो अगली मानसिकता क्या रहती है, अब टिकट निकालेंगे, थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे, हम फिर मधुबन जाएंगे। तो ध्यान तो इधर मधुबन में रहता है सबका, क्योंकि असली घर तो इधर ही है साकार रूप से। और लेकिन जितना हमको मधुबन आकर्षित करता है उससे ज्यादा हमको परम धाम का आकर्षण होना चाहिए। यहां से भी तो छूटना है ना, ये भी तो हद है, इस हद से भी पार जाना है। तो हम लंबे समय तक उस घर के साथ हमारा कितना प्यार है, वहां कितना समय बिताते हैं, जैसे बताया वहां ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने के लिए सप्त योग, कल बताया था ना कि अपने को हमेशा क्या समझो, कल्याणकारी बिंदी बाप की, शिव जैसे शिव बाबा बिंदी है, मैं वहां बिंदी हूं। और कौन सी शिव आते बताई थी, दूसरा जैसे बाप कंबाइंड सीड रूप, बीज रूप है, तो हम भी वहां बीज रूप हैं। तीसरा शाइनिंग, जैसे वो वहां ज्योति चमक रही है, मैं भी बाबा के सामने बाबा की रोशनी से जगमगा रहा हूं। चौथा स्टार, जैसे बाबा स्टार है, मैं भी स्टार हूं, सफलता की सितारा हूं। आज के मुरली में जहां दृढ़ता है वहां सफलता ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। सहज प्राप्ति का युग है, फिर मेहनत क्यों करते हो, है ना, स्वयं बाप साथ है तो इतनी मेहनत क्यों, तो स्टार समझना है। चौथा पांचवा सन, अपने को हमेशा, जैसे बाबा ज्ञान सूर्य, तो मैं आत्मा भी मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। तो लंबे समय से जैसे परम धाम में स्थूल चीजें क्रिएट करनी है, क्योंकि हमको लंबे समय तक वहां बिताना है, नहीं तो इसी संसार में हम जीते रहेंगे। और ऊपर की अनुभूति कर पर हुए, जबकि वास्तविक हमारा असली गर्भ है तो सन समझना है। फिर सागर, बाबा आनंद का सागर है, तो मैं आत्मा उसमें जैसे समाती जा रही हूं और एक गहरी अनुभूति होती जा रही है, और उसका हमको लंबे समय तक चिंतन करना है। केवल एक दो सेंटेंस तक ही पर्याप्त नहीं है, उसी चिंतन में खो जाना है ताकि हम लंबे समय तक परम धाम की शांति को हम स्वयं में भर सके, जो हमारी मूल प्रॉपर्टी है उसमें हम स्थित रह सके, उसकी हम अनुभूति कर सके। और लास्ट में बताया था स्वीट का पहाड़, बाबा स्वीट का पहाड़ है और मैं चीटी हूं तो मैं स्वीट के पहाड़ को खा रही हूं। तो स्वीटनेस क्या, बाबा का ज्ञान कितना मीठा है, बाबा रू रुआन करनी है, बाबा आप कितने मीठे हो, आपने हमको क्या से क्या बना दिया, कितने ज्ञान रत्नों से हमें श्रृंगार दिया, क्या थे और क्या बन गए, कितना ऊंचा बना दिया, कितनी विशेषताओं से सजा दिया। तो लंबे समय तक हम इसका चिंतन करते जाएंगे तो हम सदा प्रफुल्लित रहेंगे, और इस संसार के जो मोह पाश में हम बंधे हुए हैं तो उससे मुक्त होकर हम अपने आप को मोह से मुक्त करके नष्ट मोह समृद्धि स्वरूप बनाकर बाबा की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। ठीक है, ओम शांति। हाँ जी, हाँ, जो स्थूल रूप में वैराग्य बढ़ाने के लिए, एक तो हमें इस जीवन में पहले हमें स्वयं से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें इस जीवन में जहां जहां दुख मिला हुआ है और उस दुख का परिणाम क्या हुआ, जहां दुख उस परिणाम से हमको हमेशा घाटा ही रहा है, हमारा जीवन प्रगति को नहीं पाया, तो उसमें देखा कि कहां कहां स्वार्थवश लोग हमारे से बिहेवियर कर रहे हैं, तो एक तो वो देखना है। दूसरा फिर जो भी कह रहे भाई जी हॉस्पिटल में जाएं देखें, और कहां कहां और भी बहुत सारी बातें हैं, भिखारी कैसे मांग रहे हैं, क्या हो हालतों की संसार की, इतना संसार में दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन फ्लड्स आ रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, तो उस संसार को हम उन चीजों घटनाओं को देखते तो हमारा वैराग्य निरंतर बढ़ता जाएगा। और वो तो हो गया फिर स्थूल रूप से, लेकिन ज्ञान जो है ना बहुत शक्तिशाली है, अगर हमारा ज्ञान से लगाव है तो भी हमारा वैराग्य बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज्ञान सीधा डायरेक्ट ऊपर से अवतरित हुए महावाक्य है, वो वैराग्य का सागर है बाबा, तो उसके ज्ञान को हम जितना आत्मसात करते जाएंगे तो भी हमारा वैराग्य बढ़ता जाएगा। और पिछले अनेक प्रकार के दुखों से तो हर मनुष्य निकला हुआ है, तो उसका भी हमको परिणाम देखना, क्या परिणाम हुआ आखिर वो उस सब दुख देने वाले। हाँ, वो तीन चार संडे की मुरली में था पहले, वहां देह की बात बाबा ने कही कि अभी आपको ये देह कैसा हो गया, जड़जड़ी भूत चत्तियों वाला शरीर हो गया है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, और संबंधों का बताया था कि वो संबंध हर एक संबंध लेने वाला ही है, देता कोई नहीं है, हर एक की अपेक्षा रहती है यहां से मुझे कुछ ना कुछ इस संबंध से मुझे प्राप्ति हो, केवल एक बाबा ही है वो जो देता है। संडे की मुरली में वो संसार में देते हैं लेकिन दुख देने वाले हैं वो, और सुख लेने की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन एक बाबा ये जिससे हमको हमेशा वो सुख का सागर है, दुख करता सुख करता है, हमारे दुखों को हरता है और हमें सुख से भरपूर कर देता है। तो ये स्मृतियां रखेंगे, कुछ एक पॉइंट्स है जो हम अपना व्यक्तिगत रूप से डायरी बनाएं या अपने मन बुद्धि रूपी डायरी में रखें नोट, और ज्ञान से जितना हमारा प्यार बढ़ता जाएगा, बाबा ने मुरली में कहा था पुरुषार्थ से प्यार है तो सबसे प्यार होगा, तो हमको पुरुषार्थ से प्यार बढ़ाना है, दोस्तों से प्यार की अपेक्षा नहीं रखनी है, ना ही हमको कोई प्यार देने वाला है, ना ही कोई ऐसा है जिससे हमको प्यार मिल पाए, इसलिए अंतिम पेपर भी हमारा नष्ट मोह स्मृति लब्धा का है, तो वो भी हमको सामने रखना है। और ये अभी ड्रामा पूरा हो गया है, समय पूरा हो रहा है, जैसे ऑफिस में भी होते हैं जब टाइम पूरा था तो हमारा ऑटोमेटिकली अनासक्त वृत्ति होती जाती तैयार, उसी तरह ड्रामा पूरा हो गया, खेल पूरा हो गया, घर वापस लौटने का टाइम है, तो भी ये भी अगर हमको स्मृति में रहे तो भी हम नष्ट मोह बनते जाएंगे। तो जो कुछ एक स्मृतियां हैं जो हमको खुद ही तैयार करनी पड़ेगी, जिस भी कर्म क्षेत्र में हम रहते हैं उसी के अनुसार हम अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ज्ञान के पॉइंट अपने पास रखेंगे, उनका चरणिंग करते रहेंगे, मनन चिंतन करते रहेंगे, कुछ लिखते रहेंगे, तो हम इस जीवन का सुख अनुभव कर सकते हैं और नष्ट मोह बन सकते हैं। मोह मनुष्य को अंधा बना देते हैं, जो महाभारत में उसका गायन है, धृतराष्ट्र मैं निमित्त हूं ट्रस्टी हूं, ये भी हमारा बहुत निमित्त जो है बहुत गहरा भाव चाहिए, नहीं तो ऊपर से तो आता लेकिन अंदर से बड़ा मुश्किल होता है, कर्ण करावन हार अपने को। हाँ जी, हाँ हाँ, बाबा ने कहा था कि मेरे को तेरे में कन्वर्ट कर दो, अगर मैं और मेरा दो शब्द बताए थे, अगर मैं याद आए तो मैं आत्मा हूं, अगर मेरा याद आए तो मेरा बाबा है, तो ये सचमुच लंबे समय की स्मृति रहती है। हम उसकी साधना में रहते हैं, बार बार उसको रिवाइज करते हैं, कुछ चिंतन करते हैं, तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। नहीं तो वो वहीं का वहीं रह जाता है। पॉइंट तो याद रहेगा, लेकिन लंबे समय तक हमने उसका अभ्यास नहीं किया तो हमारे रगों में समाएगा नहीं। जैसे कल स्लोगन था ना कि उमंग उत्साह का खून तुम्हारे नस नस में समाया हो, सेवादारी तेरा तेरा करके तैर जाएंगे। हाँ, तो इन चीजों से मुक्त होने के लिए हमको स्वयं ही पुरुषार्थ करना है। ठीक है, और नष्ट मोह बनने के लिए हाँ परमात्मा से स्नेह होगा, और उसके लिए आत्म अभिमानी की स्थिति की प्रैक्टिस, तो हमारा प्यार बढ़ता जाएगा उससे, क्योंकि जो वो है उसके जैसा बनना पड़ेगा तभी प्यार बढ़ेगा। हाँ, शुद्ध मोह जो बताया, सब शुद्ध मोह माना सार्वजनिक यूनिवर्सल, वो तभी उसी स्थिति में होगा जब हम आत्मा की स्थिति में स्थित रहेंगे, नहीं तो देह आकर्षित करेगा। ये चमड़ी की आंखें चमड़ी को देखती रहेंगी, और चमड़ी तो दुख देने वाली है, चमड़ी को देखने का काम किसका होता है? हाँ, तो वो उसका होता है। तो हाँ जी, सब खत्म होने वाला है, सब विनाश होने वाला है, सब राख में तब्दील हो जाएगा। जो नहीं देखने वाला है उसी को देखना है। कल की मुरली में था ना, परसों की मुरली था, विचित्र बाप है, विचित्र आत्मा है, तो विचित्र बनकर विचित्र को याद करना है। जो अदृश्य है उसी में शक्ति है, उसी में बल है। और नष्ट मोह बनने के लिए माताएं और कैसे बनते हैं, ये हमारी स्मृति रहे। जैसे बताया भाई ने कि जहां से भी हमको प्राप्ति होती है तो जो चीज देने वाला है हमारी बुद्धि वहीं ना लटक जाए। कोई भी चाहे स्थूल या सूक्ष्म, या किसी ने कोई बहुत अच्छा ज्ञान सुना दिया तो हम उसी के पीछे पड़े रहे, तो वो नहीं, उसको देने वाला कौन है? वो स्मृति चाहिए, दाता है, तो वो हमको देता रहेगा, नहीं तो हमारी बुद्धि वहीं लटक जाएगी। तो स्थूल सूक्ष्म रूप से जो भी प्राप्ति होती है, वो प्राप्ति देने वाला दाता विदाता, आज की मुरली में भाग्य विदाता, उसकी स्मृति रहेगी तो भी हम इस मोह से मुक्त होंगे, नहीं तो वहीं हमारी बुद्धि अटक जाएगी। पहला जो पाठ है वो ही अंतिम पाठ है, पहले पाठ में जितना स्थित होंगे तो अंतिम पाठ में हम पास हो पाएंगे, हर हर क्रम में वो छत्रछाया बन के। लेकिन इसकी अनुभूति स्वयं के स्तर पर बढ़ानी है अलग अलग तरीके से। ठीक है, ओम शांति।